भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के चौथे अध्याय पर चर्चा है। इसके सातवें श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभे विप्रा मंगल पूजिताः यस्य बर्हिर्षि यज्ञेश यस्य बर्हिर्षि यज्ञेशं दर्शयामसुरोजसा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभे विप्रः मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभे विप्रः मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसाः। ब्राह्मण्या ब्राह्मण अथवा भक्त, अन्य कोई दूसरा, कुतः कहाँ है, नाभे महाराज नाभि के अतिरिक्त, विप्राह ब्राह्मण समुदाय, मंडल पूजिता भली भांति उपासित एवं तुष्ट, यस्य जिसका बर्हिषि यज्ञ स्थल में, यज्ञीशं समस्त यज्ञों के भोक्ता, श्री भगवान दर्शयाम आसु दर्शन कराया, ओजसा अपनी ब्राह्म शक्ति से, ब्राह्म शक्ति से। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। दूसरी स्तुति इस प्रकार है, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक अथवा भक्त कौन हो सकता है, क्योंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था, इसीलिए अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने महाराज नाभि को भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। तात्पर्य, यज्ञोत्सव के कार्य में लगे हुए पुरोहित सामान्य ब्राह्मण न थे, वे इतने शक्तिशाली थे कि अपनी स्तुति से भगवान का प्राकट्य करा सकते थे। इस प्रकार से महाराज नाभि को ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सके। जब तक कोई वैष्णव ना हो वह भगवान को बुला नहीं सकता। ईश्वर किसी प्रकार का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवः शुभच गुरु। भले ही कोई ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में कितना ही निपुण क्यों ना हो, किंतु यदि वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं हो सकता। किंतु यदि श्वपच भी वैष्णव है तो वह गुरु हो सकता है। ये ब्राह्मण निश्चय ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अत्यंत पटु थे। वे वैदिक अनुष्ठान कराने में भी दक्ष थे और सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि वे सभी वैष्णव थे। अतः अपने आत्मबल से वे भगवान का आवाहन करके अपने शिष्य महाराज नाभि को साक्षात दर्शन दिला सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ओजसा शब्द की टीका भक्ति के बल से की है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रादिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारुत्कंठयोस्फुरा। हरे कृष्णा। तो पांचवें स्कंद के इस चौथे अध्याय पर अब चर्चा है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि ऋषभ देव प्रकट हुए नाभि महाराज और मेरु देवी के पुत्र के रूप में, और अब इस अध्याय में उनके लक्षणों को या उनके चरित्र को कहा जाएगा कैसे थे ऋषभ देव। तो जब नाभि महाराज ने देखा कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस समय उन्होंने ये भी देखा कि उनका जो पुत्र है वो ऐसे चिन्हों को प्रकट कर रहा है जैसे जो भगवान के सूचक हैं। जब छोटे से ही बालक थे तब से ही ऋषभ देव ने भगवान के जो लक्षण होते हैं या जो चिन्ह होते हैं उनको प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं ऋषभ देव के रूप में। तो इसीलिए चिन्ह जैसे उनके चरण कमलों पर जो चिन्ह होते हैं भगवान के, ऐसे चिन्हों को उन्होंने प्रदर्शित किया ये दिखलाने के लिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और जीव और भगवान में अंतर होता है, जीव कभी भगवान बन नहीं सकता, भगवान भगवान है और जीव जीव है, और हमेशा ये अंतर उसमें बना रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता जैसे कुछ मायावादी लोग कहते हैं कि आज हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं, आगे चलकर भक्ति कर अच्छे कार्य कर जगत में कोई परोपकार करके हम भगवान हो जाएंगे। ये सब धोखा है, क्योंकि भगवान कोई पद नहीं है, भगवान जीव हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ जीव हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम, तो सारी चेतनाओं में वो सर्वश्रेष्ठ चेतना है, इसीलिए अंतर है जीव और भगवान में। तो ये दिखलाने के लिए ऋषभ देव ने ऐसे चिन्हों को प्रकट किया, और फिर धीरे धीरे ऋषभ देव बहुत प्रसिद्ध हो गए। सारे जो प्रजा थी, स्वाभाविक है भगवान है तो प्रजा उनसे आकृष्ट होने लगी, और उनकी इस बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखकर इंद्र को द्वेष हो गया। पता नहीं इंद्र क्या करते हैं ऊपर बैठकर, यही देखते रहते कौन प्रसिद्ध हो रहा है, कौन तपस्या कर रहा है। तो उनको द्वेष हो गया, उन्होंने वर्षा बंद कर दी, तो पूरे भारतवर्ष में वर्षा नहीं हुई। अजनाभ उस क्षेत्र को कहा जाता था, तो वर्षा ही नहीं। तो उस समय ऋषभ देव ने अपनी शक्ति से, इंद्र ने वर्षा बंद कर दी, ऋषभ देव ने अपनी शक्ति से जल बरसाया। अपनी भगवान को कोई कष्ट है, इंद्र को शक्ति कौन देते हैं? भगवान देते हैं। इंद्र भूल जाते हैं उस बात को, तो फिर भगवान उसको सिखलाते हैं। जैसे जब गोवर्धन धारण किया था तो भी इंद्र को यही तकलीफ थी, भूल गया इंद्र किससे बात कर रहा है या किसको वो दबाने का प्रयास कर रहा है। और फिर भगवान को दिखाना पड़ा कि उसने सारे संवर्तक तक को भेज दिया और कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा वृंदावन। तो इसी तरह उन्होंने अपनी शक्ति से वर्षा करवाई, और फिर सारे जो नागरिक थे बड़े प्रसन्न रहते, उनसे बहुत गुणों को उन्होंने प्रकट किया। तो ये सब देखकर जब उन्होंने देखा कि ये बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, साथ ही साथ रक्षा करने के लिए योग्य हैं जनता की, तो ब्राह्मणों के हवाले उन्होंने कर दिया, और नाभि महाराज ने राज्य को त्याग दिया। क्योंकि नाभि महाराज ने देखा अब राज्य सुरक्षित है ऋषभ देव के अधीन, तो इसलिए उन्होंने फिर राज्य को त्याग दिया, अर्थात वो वन में चले गए, बद्रिकाश्रम चले गए, नाभि देवी के साथ, क्षमा चाहते मेरु देवी के साथ। तो नाभि महाराज और मेरु देवी दोनों बद्रिकाश्रम चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने तपस्या की। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था में हर वर्ण में ये सुविधा है कि वे थोड़ा समय अपना जीवन जिए और फिर जीवन के अंत में सब कुछ त्यागें, ये आवश्यक है। प्रभुपाद लिखते हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, क्षत्रिय हो, उसको अंत में त्यागना चाहिए, ग्रह त्याग करना चाहिए, जैसे नाभि महाराज ने किया। तो घर को त्याग देना चाहिए, किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए अंत समय में, जिससे पूर्ण रूप से मन कृष्ण में लगे। जीवन भर हम परिवार चलाते हैं, जीवन भर हम समाज के लिए कार्य करते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ कार्य करते हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति को एक समय सब कुछ छोड़ना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान में मन लगाना चाहिए और फिर भगवान को प्राप्त करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य इतना ही है। लेकिन अगर हम उसी में लगे रहेंगे, घर में, परिवार में, गृह आप्त सुताप्त इत्यादि, बच्चों में, तो फिर कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम लोग नाम मात्र के भक्त कहलाएंगे, 20 साल से जप कर रहे हैं, 30 साल से जप कर रहे हैं, तो इसलिए नाम हो जाएगा, भक्त हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए आवश्यक है कि हम त्याग करें और भगवान में आसक्ति बढ़ाएं। तो नाभि महाराज चले गए और फिर ऋषभ देव ने वर्णाश्रम पद्धति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किया। तो पहले उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया, उन्होंने अपने शिक्षकों से, आध्यात्मिक गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर ज्ञान प्राप्त कर उनको दक्षिणा दी, ऐसा लिखा हुआ है भागवत के श्लोकों में, और फिर उन्होंने आकर राज्य को संभाला। तो पहले गुरुकुल में रहे, दक्षिणा दी, फिर उन्होंने विवाह किया जयंती नाम की महिला से, जिन्हें इंद्र ने भेजा था। तो इंद्र पहले तो द्वेष करते हैं, बाद में क्षमा मांगने के लिए कुछ करते रहते हैं। तो इंद्र ने जयंती देवी को भेजा, तो जयंती देवी से विवाह किया ऋषभ देव ने, और फिर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया ऋषभ देव ने। ऐसा वर्णन है कि चार, जिस समय उन्होंने अपने राज्य को संभाला, तो उस समय राज्य में सब तरफ, राज्य का वर्णन है कि जो लोग थे बड़े संतुष्ट थे, वे कुछ मांगते नहीं थे ऋषभ देव से, कोई मांग नहीं थी उनकी, इतने संतुष्ट रखा था ऋषभ देव ने सबको अपने राज्य में। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि वर्णाश्रम जो पद्धति है इन्होंने पालन किया, उसका उद्देश्य है कि जीव मुक्त हो, मुक्ति की ओर जाए। तो हर स्थिति में, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में हम हो, हमें तपस्या करनी चाहिए। तो हर वर्ण और आश्रम में वैराग्य का भाव हो, और वैराग्य किस लिए? मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं, जीव मुक्त या जीवन मुक्त। ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। चांदोदय उपनिषद, चांदोदय उपनिषद में जीव मुक्त व्यक्ति के 8 लक्षण बताए गए हैं कि किसे हम जीव मुक्त कहते हैं, अर्थात जो जीते हुए जीवन में है, अभी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन मुक्त व्यक्ति है। तो उसके 8 लक्षणों को बताया गया है। पहला लक्षण है कि उसने पाप से वो मुक्त हो गया है, उसके जीवन में कोई पापपूर्ण कार्य नहीं करता वो। तो ये पहला लक्षण उसका बताया गया है, अपहत पाप। अपहत यानी जिसने पापों को दूर कर दिया, त्याग दिया, पापी जीवन को त्याग दिया। इस जगत में सभी लोग पापी जीवन जी रहे हैं, विशेष करके कलयुग में 4 पापों को किया जाता है, मांसाहार, नशापान, जुआ और अवैध संग। तो ये नशे, ये जो 4 पाप हैं, ये पापपूर्ण जीवन के आधार हैं कलयुग में। तो इसीलिए जीव मुक्त वो है जिसका पहला लक्षण दिया गया है अपहत पापा, उसने अपने जीवन से पापों को दूर कर दिया, कोई प्रकार का पापी जीवन वो नहीं जीता। देखिए व्यक्ति जब तक पापमय जीवन जीता है भयभीत रहता है, भय पापमय जीवन के कारण है। लेकिन जिस समय वो पापमय जीवन को त्याग देता है, भगवान को समर्पण कर देता है, तो पूर्ण सुरक्षित है, कोई भय नहीं होता उसको। इसीलिए भगवान के चरणों की आश्रय लेने वाला व्यक्ति अभय चरण कहलाता है, ये अभय चरण अरविंद, क्योंकि कोई भय नहीं रह जाता भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। तो पहला लक्षण जीव मुक्त का है कि वो अपहत पापा है, पापमय जीवन को दूर करे। जब हम ये लक्षण सुन रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तो मुक्त जीव के लक्षण है, हमें ये सोचना है कि हमने कितना इस ओर प्रगति की है, हम कितना इन गुणों को ले रहे हैं। दूसरा लक्षण है उसका विज्वर, विज्जरा, विज्जरा मतलब जरा, ये बुढ़ापे को कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो विज्जरा, विज्जरा मतलब जिसको वृद्ध अवस्था के कष्ट सताते नहीं है। वृद्ध अवस्था आए भी, ऐसा नहीं कि उसको वृद्ध अवस्था नहीं आती, लेकिन विज्जरा मतलब जरा है लेकिन उससे विचलित नहीं होता, उसको विजरा कहते हैं। तो बुढ़ापा का बहुत कष्टदायक है, जब वृद्ध होने लगते हैं व्यक्ति, जब युवावस्था में होता है 30, 35, 40 तक भी ज्यादा से ज्यादा उसको कोई पता नहीं चलता अपने शरीर के कष्टों का, आजकल 30 में शुरू हो जाता होगा, कलयुग है तो 30 तक उसको कुछ पता नहीं चलता, बड़ा 30-35 तक बहुत आनंद में रहता है, शरीर की चिंता नहीं करता, शरीर स्वास्थ्य रहता है। और फिर बूढ़े लोगों की ओर देखकर सोचता है क्यों ये लोग इतना चिंता करते हैं अपने शरीर की। फिर जब 40, 45, 50 ऐसे बढ़ने लगता है तब उसको ज्ञान होने लगता है, तब आत्मा से शरीर का ज्ञान होने लगता है, कहाँ कहाँ पे दर्द होता है, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी दवाई खानी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से तकलीफ हो जाती है, ऐसे बहुत सारा बुढ़ापे में होता है। युवा अवस्था में जितना भी खाइए कोई चिंता नहीं है, ऐसा लगता है बड़ा कम ही खाया है, एक दो चपाती और मिली होती तो अच्छा था, रसगुल्ला कम हो गया। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में लगता है कि नहीं ये दूर रहे, क्योंकि अगर आधा भी ज्यादा खा लिया तो रात भर तकलीफ हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, तो वृद्धावस्था। तो दूसरा लक्षण है कि जीव मुक्त व्यक्ति विजरा, विजरा मतलब उसको कोई विचलित नहीं होता बुढ़ापे से, उसकी सेवा वैसे ही चलती रहती है। अर्थात हमें ये जानना चाहिए कि अगर हमें मुक्ति के पथ पर चलना है तो पहला कार्य पापमय जीवन से दूर रहें, दूसरा कार्य अगर वृद्धावस्था तक पहुंच गए हैं तो उसके प्रभाव से विचलित ना हो, सेवा जारी रखें, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो तैयारी कर लें, क्योंकि वृद्धावस्था तो आनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बच नहीं सकता कोई। हाँ, कोई कोई पापी व्यक्ति बुढ़ापे से बच जाता है, युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके लिए बुढ़ापा नहीं है, अन्यथा सबके लिए बुढ़ापा है। तो ये विजरा, तीसरा लक्षण उसका है विमृत्यु। विमृत्यु मतलब वो मृत्यु की तैयारी कर लेता है, इसीलिए मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, विचलित नहीं होता, उसको विमृत्यु कहते हैं। तो तीसरा लक्षण है उसका कि वो जीते जी मृत्यु की तैयारी कर लेता है। आज देखिए आप लोगों से बात कीजिए, आपके मुख से अगर मृत्यु शब्द निकल जाए लोग घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं करना चाहता मृत्यु के विषय में। क्यों? क्योंकि तैयार नहीं है मृत्यु के लिए। जो व्यक्ति तैयार है उसको क्या फर्क पड़ता है, मृत्यु की बात कीजिए, जीवन की बात कीजिए। तो कोई तैयार नहीं है मृत्यु के लिए, इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे अरे थोड़ा समय और रुकना था, अभी क्यों मर गए या अभी क्यों मर रहा हूं। हमें तैयार रहना चाहिए, ये जगत कैसा है, पदम पदम विपदाम। ये भौतिक जगत में हर पद पर विपदा है, ये कोई आनंद का स्थान नहीं है, दुखालयम है। तो इस दुखालय में, विपदा भरे हुए स्थान में हमें तैयार रहना चाहिए, जैसे एक सैनिक। एक सैनिक जब अपनी छावनी में होता है, अपने देश में होता है, अपने लोगों के बीच होता है, तो बड़े आराम से होता है। लेकिन वही सैनिक जब शत्रु की भूमि पर चला जाता है तो हर क्षण सावधान रहता है। युद्ध चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सैनिक आराम से शत्रु की भूमि में सो जाएगा कि आ जाओ ठीक है गोली मार दो, क्या करोगे ज्यादा से। वो बड़ा सतर्क रहता है, इधर उधर देखता रहता है, ध्यान पूर्वक रहता है। तो ऐसे ही इस जगत में जहां हम आए हैं, शत्रु की भूमि है, हमारी भूमि नहीं है। ये तो शत्रु की भूमि पर आ गए हैं हम लोग और युद्ध चल रहा है माया से। तो इस युद्ध में अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, तैयारी में नहीं रहेंगे हमेशा, तो एक सैनिक हमेशा तैयारी में रहता है बंदूक चलाने की कि कब मेरा शत्रु से सामना हो जाए। ऐसे भक्त को तैयार रहना चाहिए मृत्यु के कि पता नहीं कब सामना हो जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी उम्र नहीं है, 45 साल का हुआ हूं, अभी और 20 साल तो आराम से उसके बाद मृत्यु के बारे में सोचेंगे, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए भक्त को तैयार रहना चाहिए। तो ये तीसरा लक्षण है विमृत्यु, अपहत पाप विजर विमृत्यु। और फिर चौथा लक्षण है विशोक। विशोक मतलब वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता। इस जगत में ये जो शोक है ये हम लोगों को बहुत बांधे रखता, व्यक्ति यही चीजें करता। अहम मम भ्रमि भ्रोमि भोगे शोक भय। तो व्यक्ति आसक्ति है मैं और मेरा के कारण शोक और भय करता रहता है। बस यही दो चीज तो करते हैं जगत में, कुछ चीज पाने की कामना करते हैं, नहीं मिलता है तो शोक करते हैं। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। वो शोक नहीं करता, वो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा है, किसी चीज का शोक नहीं है उसको और ना कोई इच्छा है, न शोचति न कांक्षति। तो विशोक ये चौथा लक्षण है एक जीव मुक्त का। जीव मुक्त मतलब जीवन है, उसका शरीर है भौतिक शरीर, लेकिन वो मुक्त आत्मा है, उसको मुक्त होने की आवश्यकता नहीं, वो मुक्त है ही। जैसे आगे भी इसी स्कंद में जड़ भरत की कथा आएगी, तो जड़ भरत वैसे तो शरीर में थे, एक एक जड़ व्यक्ति की तरह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन थे मुक्त क्योंकि सब समय भगवान का चिंतन करते थे। हालांकि उनके घर वाले, उनके भाई, उनके पिता सोचते थे बेकार है ये, कुछ काम का लायक का नहीं है, कुछ काम नहीं करता, तो लेकिन वो उनका मन भगवान में लगा था। तो इसीलिए विशोक, विशोक मतलब जो किसी प्रकार का शोक नहीं करता। पांचवा लक्षण है विजिगहत्सः। विजिगहत्सः मतलब जिसने भौतिक भोग करने की इच्छाओं को त्याग दिया। विजिगहत्स, हत से त्याग दिया, तो कोई उसको भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं है, अर्थात उसकी इच्छाएं जो भौतिक इच्छाएं जो कामनाएं हैं जो भोग की ओर ले जाती हैं उसको उसने त्याग दिया। तो शोचति न कांक्षति, ये ब्रह्मभूत अवस्था के व्यक्ति के लक्षण भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो इसलिए विशोक और विजिगहत्स कि ना तो वो शोक करता है और ना कोई भौतिक कामना है उसको, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, तो ये उसके लक्षण है महत्वपूर्ण। तो भक्तों को हमें ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, पापों से मुक्त रहें, वृद्धावस्था की तैयारी करें, मृत्यु की तैयारी करें, तैयार रहें। आज मृत्यु आ जाए ठीक है मैं तैयार हूं, और शोक नहीं करें, भौतिक इच्छाओं को त्याग दें, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं ही बंधन का कारण है। इन्हीं के कारण तो हम बने रहते हैं। हम प्रयास करते हैं ब्रह्मचारी बनने का, सन्यासी बनने का, लेकिन फिर वो भौतिक इच्छाएं फिर से खींच लेती हैं, उनको त्याग नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो इच्छाएं आ रही हैं, फिर वो चाहे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, आनंद स्त्री के प्रति हो, ये सारी इच्छाएं केवल उस वैराग्य से आपको नीचे लाने के लिए। कौन सा वैराग्य? जो वैराग्य आपको भगवान की ओर ले जा रहा है, तो उससे नीचे खींचने के लिए ये इच्छाएं। तो बड़ा कठिन होता है एक भक्त के लिए भी कि वह सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागे, लेकिन अगर उसे ज्ञान हो जाए कि यही इच्छाएं बंधन का कारण है, तो फिर वो क्यों नहीं त्यागेगा? अगर हमें पता चल जाए कि ये करने से ही हमें नुकसान होगा, व्यक्ति के हाथ में एक बम दे दिया जाए और उसको कहा घर के अंदर वो बैठा है कि जला, और व्यक्ति को पता है कि जैसे ही बम को वो जलाएगा फूटेगा सारा, उसका घर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो क्या वो व्यक्ति उसको करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। लेकिन यही ज्ञान हमें हो जाए कि जो भौतिक इच्छाएं हैं ये उस बम की तरह है जो हमारे हाथ में दे दिया गया है, कि जैसे ही इसको जलाओगे धड़ाम सारा जो आध्यात्मिक तुम्हारी अस्तित्व है वो फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम लोग वही करते हैं। तो इसीलिए एक भक्त को ये लक्षण भी होने चाहिए कि वो विजिगहस्त हो। और फिर साथ ही साथ अपिपाता, अपिपाता मतलब वो केवल भगवान की सेवा की इच्छा करता है, उसको अपिपात कहते हैं। उसके अंदर एक तो तरफ से उसने भौतिक इच्छाएं त्याग दी, लेकिन क्या भौतिक इच्छाएं त्यागना पूर्ण है? बस भौतिक इच्छाएं त्याग दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं, उसके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, उसको कहते हैं अपिपात। कितने हो गए? छह हो गए। और सातवां है सत्यकाम। सत्यकाम मतलब जिसकी कामना, काम यानी इच्छा वासना है, तो जिसकी कामना केवल पूर्ण सत्य की ओर है, भगवान की ओर है। भगवान सत्य है, परम सत्य है, तो जिसकी इच्छा केवल परम सत्य की ओर है, जिसकी सारी कामनाएं सारे कार्य वो परम सत्य की ओर उसे ले जाते हैं, अर्थात वो इच्छा करता है परम सत्य की, परम सत्य को जानने की, तो उसको कहा जाता है कि वो सत्य काम है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो हरेक जीव के लिए उनको सत्य से, परम सत्य से जोड़ने की कामना करता हो, उसे सत्य काम कहते हैं। तो ये सत्य काम है। और अंतिम लक्षण बताया गया है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब वो व्यक्ति जो सत्य काम है, इच्छा करता है परम सत्य से जोड़ने की सबको, या परम सत्य के विचार की या उनके कार्य की। और सत्य संकल्प मतलब भगवान जो परम सत्य हैं उसके उस सत्य काम को संकल्प पूरा कर देते हैं, अर्थात जो एक जीव मुक्त व्यक्ति है उसकी इच्छाओं को भगवान पूरा कर देते हैं, इसको सत्य संकल्प कहते हैं। तो सत्य काम अर्थात वो जीव इच्छा करता है परम सत्य से संबंधित, और सत्य संकल्प भगवान उसको पूरा करते हैं। ये आठ लक्षण हैं जीव मुक्त व्यक्ति के। तो जिसके अंदर ये आठ गुण हैं, वो इस शरीर में रहते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्त है। उसको भौतिक शरीर होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। और ये सारे आठों गुण हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। सबसे पहला था अपहत पापः, पापमय जीवन को प्रभुपाद ने पूर्ण रूप से त्यागा। विजरा, बुढ़ापे की चिंता होती तो 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका नहीं जाते प्रचार प्रारंभ करने के लिए, अगर बुढ़ापे का विचलित हो रहे होते 70 साल की उम्र में। हमने तो वर्णन किया था 45-50 में, 70 साल की उम्र में प्रभुपाद गए। इसको कहते विजरा, कि कोई चिंता नहीं बुढ़ापे की, अकेले गए। ये भी नहीं कि सबको लेकर गए, सारी व्यवस्था करके गए कि क्या होगा, मैं वहां कहाँ रहूंगा, बीमार हो गया तो क्या होगा, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ सोचा नहीं। आज 70 साल का व्यक्ति अगर कहीं विदेश जाता है तो अपने साथ पूरी मेडिसिंस का बॉक्स लेकर जाता है, व्यवस्था करके जाता है, कार्ड लेकर जाता है कि कहीं वहां कुछ हो गया तो हॉस्पिटल। प्रभुपाद क्या लेकर गए, बॉक्स ले गए थे श्रीमद् भागवत का। तो ये इसको कहते हैं विजरा। अगर उन्हें बुढ़ापे से विचलित होते तो 70 साल की उम्र में वृंदावन नहीं त्यागते, कोई सन्यासी नहीं त्यागता है वृंदावन 70 साल की उम्र में, क्योंकि हर सन्यासी चाहता है बस अपना देह वृंदावन में त्याग दो। प्रभुपाद ने उसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं विजरा। और विमृत्यु, कैसे मरना है, कैसे तैयारी की, आप देखिए मृत्यु के समय भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद ने शाम को 7:20 पर अपने देह को त्यागा, लेकिन उसके 2 दिन पहले तक वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। 10वें स्कंद का 13वें अध्याय का अनुवाद चल रहा था। ये कहते विमृत्यु, तैयार थे, कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे थे हाय हाय क्या होगा क्या नहीं। उनसे पूछा गया, वहां जो वैद्य थे उन्होंने पूछा स्वामी जी क्या इच्छा है, प्रभुपाद ने कहा कोई इच्छा नहीं। यह है विमृत्यु, कोई इच्छा नहीं, तैयार थे मृत्यु के लिए। तो ये भक्त के लक्षण है। तो प्रभुपाद ने पापमय जीवन को त्याग दिया। विजरह विमृत्यु विशोक, जीवन में कभी शोक नहीं किया उन्होंने किसी चीज के लिए, हर चीज को भगवान की कृपा माना। जिस समय व्यापार करते थे पारिवारिक जीवन में थे, संन्यास नहीं लिया था, झांसी में थे और उनको एक टेलीग्राम मिला कि आपके जो व्यापार चल रहा था इलाहाबाद में, आपका ही सेवक आपके सब लेकर भाग गया, 7,000 रुपया लेकर भाग गया। उस समय 7,000 रुपया, आज का तो लाखों रुपया है, वो लेकर भाग गया। प्रभुपाद हंसे, कोई शोक नहीं, रोए नहीं, हाय हाय छाती नहीं पीटी प्रभुपाद ने, ये क्या हो गया, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। प्रभुपाद ने कहा भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका धन हरण कर लेते हैं शनै, हरिश्यामी तद्धनम शनै, भगवान ने कहा है जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका धन। प्रभुपाद ने वही श्लोक कहा। तो कोई शोक नहीं दिखाया अपने जीवन में उन्होंने, कितना कष्ट लेना पड़ा उनको ये आंदोलन को बढ़ाने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन कभी किसी चीज का शोक नहीं दिया कि हाय हाय ये क्या किया भगवान ने मेरे साथ। कहीं पढ़ा आपने प्रभुपाद ने ऐसा कहा हो? प्रभुपाद हर चीज को भगवान की कृपा मानते हैं, अच्छी चीज है भगवान की कृपा। तो इसको कहते हैं विशोक। और फिर साथ ही साथ में उन्होंने जितने भी जो उनकी इच्छाएं थी, विजिगहत्स मतलब कोई भौतिक इच्छा लेकर प्रभुपाद ने यह आंदोलन नहीं चलाया। अगर भौतिक इच्छा लेकर चलाया होता तो शायद यह आंदोलन कभी इतना नहीं बढ़ता। क्या भौतिक इच्छा थी प्रभुपाद की इस आंदोलन को बढ़ाने में? कोई भौतिक इच्छा नहीं, अपने आनंद को प्रभुपाद ने कभी नहीं देखा। जिस समय एक बार श्रील प्रभुपाद को उनके भक्तों ने बहुत आलीशान व्यासासन अर्पित किया, उन्होंने बहुत आलीशान व्यासासन बनाया और प्रभुपाद को लेकर आया और दिखाया प्रभुपाद ये आपके लिए, तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। तो सबको लगा कि शायद क्या हुआ पता नहीं, तो पूछा तो प्रभुपाद ने कहा मुझे देखकर अपने राधा दामोदर मंदिर के वृंदावन के वो 2 कमरे याद आ रहे हैं। अर्थात हृदय से कोई भावना नहीं थी कि हाँ इतना आलीशान अब मैं इस पर बैठूंगा राजा की तरह और आपको आदेश दूंगा। उनको उस समय भी अपने वही छोटे से 2 कमरे याद आ रहे थे। ये कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि मुझे बड़ा बड़ा आसन मिले, बड़ी कारें मिले, लोग मुझे गुरु कहें, मैं यहां जाऊं वहां, कोई इच्छा नहीं भौतिक इच्छा। और इस पे आगे अपिपातः यानी केवल भगवान की सेवा की इच्छा। और ये तो हमें आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं, कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद ने जो किया केवल भगवान की सेवा के, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, मंदिरों का 108 मंदिरों का निर्माण किया, बीबीटी बनाया प्रभुपाद ने, क्या क्या नहीं किया, लेकिन सब भगवान की सेवा के लिए। एक भी कार्य प्रभुपाद का ऐसा नहीं है जो भगवान की सेवा के अलग हो। ग्रंथ छापना भगवान की सेवा के लिए, प्रचार करना भगवान की सेवा के लिए, भक्त बनाना भगवान की सेवा के लिए, मंदिर बनाना भगवान की सेवा के लिए, गुरुकुल बनाना भगवान की सेवा के लिए, फार्म कम्युनिटीज बनाना भगवान की सेवा के लिए, हर कार्य प्रभुपाद का भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए अपिपातः। और फिर सत्य संकल्प, सत्य काम मतलब केवल परम सत्य के लिए उनकी ओर सबको ले जाना। इसीलिए जब ये संस्था बनाई, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्तों ने कहा प्रभुपाद पुट इट गॉड कॉन्शियसनेस, इसको भगवान लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय भगवान भावनामृत संघ, कृष्ण मत लिखिए, कृष्ण कहने से वो सीमित हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्णा इज गॉड, परम सत्य कृष्ण है, इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गॉन, नहीं तो ये इज गॉन हो गया होता अगर गॉड लिखते प्रभुपाद, है ना। ISKCUN की जगह ISGCUN इज गॉन, अभी तक चला गया होता। तो इस कौन बनाया प्रभुपाद ने, तो सत्य कामा, जो भी कार्य, कभी उन्होंने उस सत्य से वो विचलित नहीं हुए, कभी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण के अलावा और कोई परम सत्य है, कभी उन्होंने और कोई बात नहीं की, हमेशा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बस यही संदेश उनका, ये सत्य कामा। और सत्य संकल्प, प्रभुपाद की इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया। जिस समय प्रभुपाद के पास एक भी मंदिर नहीं था, अकेले पार्क में बैठे थे, एक व्यक्ति को उन्होंने कह दिया मेरे हजारों शिष्य हैं, 108 मंदिर हैं, प्रभुपाद की इच्छा को भगवान ने पूरा किया, यह है सत्य संकल्प। तो ये लक्षण हैं जीव मुक्त के। तो जीवन है, शरीर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान की सेवा में है। तो ऐसे ये वर्णन प्रभुपाद अपने तात्पर्य में करते हैं कि किस प्रकार जीव मुक्त के लक्षण हैं। तो ऐसे ऋषभ देव फिर वर्णाश्रम का पालन करते हुए विवाह किया, उन्होंने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, और 100 के 100 ऐसे नहीं थे कि कोई उसमें से एक आध नालायक निकल गया हो, 100 के 100 बढ़िया पुत्र थे। पहला पुत्र भरत महाराज, जिनका वर्णन आगे आएगा, जिनके नाम से स्थान का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनको भरत, उनका पुत्र, तो इतने महान थे कि सारे पृथ्वी को उनका नाम भारतवर्ष देना पड़ा, मतलब इतने महान राजा हुए। तो पहले पुत्र थे भरत महाराज। उसके बाद 9 पुत्र और हुए, और बाकी 9 पुत्र अलग अलग राजा बने अलग अलग स्थानों पर, तो 9 क्षत्रिय हुए। देखिए अभी अलग अलग पुत्रों ने कैसे कार्य किया, तो एक तो भरत महाराज महान, और उनके अलावा 9 पुत्र वो भी क्षत्रिय, राज्य किया उन्होंने, 10 पुत्र हुए, और फिर 9 पुत्रों ने श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य ले लिया, वो परमहंस हुए 9 पुत्र, जिनको नव योगेंद्र भी कहते हैं, जिनकी कथा आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं मैं आगे सुनाऊंगा तुम्हें उनकी कथा, जब वासुदेव और नारद मुनि का संवाद को कहूंगा तो 11वें स्कंद में एक कथा आएगी, तो उन्होंने कहा बाद में सुनाऊंगा। तो वो 9 पुत्र वो पूर्ण रूप से भागवत का प्रचार करते हैं, भागवत के अधिकारी हैं, भागवत कहने के वो 9 पुत्र। तो ऐसे कितने हो गए, मैथमेटिक्स भी ख्याल कर, एक भरत महाराज, अन्य 9 पुत्र राजा, और फिर अन्य 9 पुत्र 19, बचे कितने, 79 81 कौन से क्लू स्कूल में पढ़ाई थी? 81 81 बच्चे हैं, 19 और 81 100 होते हैं ना, सही है ना कि मेरा मैथमेटिक्स गलत है? 81 वो सारे ब्राह्मण हो गए। देखिए क्षत्रिय के पुत्र हैं लेकिन उन्होंने उन गुणों को स्वीकार किया और वो ब्राह्मण हो गए सारे के सारे। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, ये प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो लेकिन गुणों के कारण जाना जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने जाति जन्म विभागशः नहीं कहा कि जाति और जन्म से जिसका विभाग नहीं है, उन्होंने कहा गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्मों से विभाजित हैं। तो ऐसे 81 पुत्र जो थे वो ब्राह्मण हो गए और ऐसे 100 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया था ऋषभदेव ने। और फिर ऋषभदेव के गुणों को कहा गया है कि कैसे ऋषभदेव थे, उनके क्या गुण हैं, उनका वर्णन किया गया। तो पहला वर्णन किया गया कि पूर्ण स्वतंत्र भगवान हैं, उनको स्वराट कहा जाता है। तो स्वराट अर्थात पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरा, उनका जो शरीर था वो आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं था, इसका आगे भी हम लोग वर्णन सुनेंगे। तीसरा लक्षण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे शोकों से वो परे थे, उनको कोई ये दुविधा नहीं थी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि वो तो प्रकट हुए थे, वो तो भगवान है, उन्होंने साधारण जन्म नहीं लिया, तो इससे वो परे थे। और आगे कहा गया है कि उनको कोई आसक्ति नहीं थी, साथ ही साथ समान दृष्टि थी सब पर दुख दुखी थे वो, दूसरों के दुख को देखकर दुख अनुभव करते थे। और फिर उन्होंने अपने आचरण से, जैसे वो गृहस्थ रहे इत्यादि, आचरण से दर्शाया कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती। हालांकि उनको कोई आवश्यकता नहीं थी गुरुकुल जाने की, ज्ञान लेने की या फिर वर्णाश्रम के पालन की, क्योंकि भगवान तो उससे परे हैं। भगवान को वर्णाश्रम धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के लिए कोई नियम नहीं। जैसे उदाहरण के लिए एकादशी आती है तो एकादशी के दिन हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये नियम हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान, जरूरी नहीं कि भगवान एकादशी का प्रसाद खाएंगे एकादशी के दिन। चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया इसको, एकादशी के दिन रोने लगे क्योंकि वहां पर हिरण्य मजुमदार के घर पर बना हुआ था कुछ बहुत सारा व्यंजन। चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, मुझे तो वही खाना। सब लोग बोले अरे ये क्या हो गया, क्यों रो रहा है, इसको कैसे पता वहां फीस्ट बना है ना, अभी किसी के घर में फीस्ट बना हमको थोड़ी पता होता है इसको कैसे पता उधर जा, वही खाना वही खाना। तो भगवान के लिए कोई एकादशी नहीं है, भगवान राजभोग ही खाते हैं। तो इसी तरह ये जो वर्णाश्रम नियम है ये हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, यदि यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जना, प्रभुपाद कहते इस अध्याय में एक श्लोक आया है ऐसा ही जैसा भगवद्गीता का श्लोक है कि जैसे जैसे महान श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे करो। तो केवल एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ऋषभदेव ने ये कार्य किए, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। तो ऐसे ऋषभदेव के लक्षणों को कहा गया है। और फिर एक समय ऋषभदेव जब घूमते हुए ब्रह्मवर्त स्थान पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा यज्ञ हो रहा था, बहुत सारे ब्राह्मण थे, तो वहां उनके पुत्रों ने बैठकर ब्राह्मणों से श्रवण किया और फिर सभी नागरिकों के सामने ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हैं ऋषभदेव के, एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि कई दिनों तक उस पर चर्चा हो सकती है। तो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को फिर जो ये ज्ञान दिया, ये अगले अध्याय का विषय है कि ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो अगले अध्याय